الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عن قریب اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. اس آیت میں اب بنیادی طور پہ انہی اصحاب کی تعریف ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا. پیچھے واقعہ شروع میں ہم نے پورا الحمدللہ اسی لیے دیکھ لیا تھا کہ ان آیتوں کو سمجھ سکے. تو یہاں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر پھیلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ اگر وہ شہید کر دیے گئے تو پھر اب ہم بھی ان کے ساتھ بدلہ لیں گے، کیونکہ قصاص کے لیے بدلہ لینا اور امبیسڈر کا قتل یعنی قاصد کا قتل ایک بہت بڑی چیز تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی، اپنے وطن سے دور تھے. آج ایسی سوچیں نا، ایک چھوٹا سا ملک کسی سپر پاور کے بارڈر پہ کھڑا ہو بغیر تیاری کے اور اس سے لڑنے کی بات ہونے لگے تو سوچے تو سراسر ہلاکت تھی نا. لیکن صحابہ کرام کے اندر اتنا ایمان تھا کہ وہ ایسے وقت میں بھی بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اصحاب البیت کہتے ہیں. صحابہ کرام کے درجے، کچھ لوگ ایک درجے پہ ہیں، پھر دوسرے پہ، پھر تین میں. سب سے پہلے جو سب سے اونچا مقام جن کا آتا ہے، آف کورس وہ چار خلفائے راشدین کا آتا ہے، ابو بکر سے لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا موقع ملا. دوسرے درجے پہ جن کا نام آتا ہے وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری مل گئی کہ یہ جنت میں جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور مقام ہے 313 صحابہ کرام کا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور وہ بھی جنگ ایک اپنے وقت کی ایسی جنگ تھی کہ جو بغیر کسی تیاری کے لڑی گئی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سب کو کہہ دیا کہ جنتی ہیں، آج کے بعد کچھ بھی کام کر لیں پھر بھی جنت میں جائیں گے. اس کے بعد پھر ان 1400 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. بیعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ پلج، وعدہ، حلف اٹھانا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کے نبی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، یہ وہ لوگ کون تھے؟ 1400 کے قریب لوگ تھے، 1400. یبایعون، لفظ یبایعون کے اندر اور آگے پھر یبایعون آ رہا ہے، دونوں کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر بیعت چھپا ہوا ہے. بیعت، بیعت کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کا عہد کر دینا کہ ہم اس کام کو کریں گے. ہمارے ہاں آج بیعت کا لفظ بھی بہت ہی زیادہ کانٹراڈکٹری ہے. تو بیعت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ اس کو بھی بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں اور کوئی ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسری پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توازن پہ رہنے والا بنائے. تو دیکھیے کہ اپنی ذات کے حساب سے بیعت کوئی بری چیز نہیں ہے. بیعت ایسی ہے جیسے کمٹمنٹ. آپ میں سے کسی نے اس ہال کی چابی لی کہ ہم کلاس سے پہلے اس روم کو کھول دیں گے، یہ بھی پلیج ہے، ذمہ داری. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، 9 بجے آئیں گے، اتنے دن آئیں گے، یہ کام کریں گے، یہ سب پلیجز ہیں، کمٹمنٹ کا نام ہے. لیکن شرن بیعت کیا ہوتی ہے کہ امام وقت جو حکمران ہے، جس کے پاس اتھارٹی بھی موجود ہے، کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ قانون آپ کو کوئی بات دیتا ہے بلکہ اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. اللہ کے نبی کے دور میں آپ خود جو ہی کوئی مسلمان ہوتا تھا شخص تو اللہ کے نبی اس سے بیعت لیتے تھے. مردوں سے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں کے ساتھ بیعت لینے کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایک کپڑا آپ ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تو اسی کپڑے کا دوسرا سرا وہ عورت لے لیتی تھی. پانی میں ہاتھ پہلے آپ رکھتے پھر اس میں وہ ڈالتے، یعنی آپ کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں چھوتے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال ایسی بیعت جب بھی کسی دور میں مسلمان حکومت ہوگی بالکل جائز ہے، الاؤڈ ہے. جیسے کوئی ملک لے لے، مثال دیتی ہوں میں، مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتا، جیسے آج کے دور میں کمپیریٹیولی سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون چلتے ہیں. अभी सऊदी अरब का जो फरमा रवा है, अगर अपने लोगों से कोई बैत लेना चाहता है तो ले सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने देखा सिंपल प्लेजिस की सूरत में। आप पाकिस्तान में देखते हैं कोई शख्स नया नॉमिनेट होता है, वजीर पाकिस्तान बने, पूरी उम्मत के सामने वो एक हलफ उठाते हैं, कुरान हाथ में, मैं जो करूँगा सही करूँगा और सच कहूँगा, ये किस्म का प्लेज हो गया ना। ठीक है, तीसरी एक किस्म रह जाती है जो हमारे यहाँ आज के दौर में थोड़ी सी मारूफ है, खास हिस्से में, कि दीनी रहनुमाओं से बैत कर लेना। बाज़ लोग कहते हैं जी हमने फलां बुजुर्ग के साथ बैत की हुई है, पीरों के साथ बैत करना, किसी की मुरीदी में आ जाना। बाज़ कुछ जमातों में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें अपनी बैत में ले लेते हैं। वो कहते तो उसको बैत नहीं, कुछ तो रियली बैत भी कहते हैं। ये बहुत मारूफ ग्रुप्स हैं ऐसे मुस्लिम्स में, वो कहते हैं कि हमारे साथ बैत करो। फिर उनके वर्कर्स इतने सख्त हो जाते हैं बेचारे, कि वो हर वक्त वही हदीसें सुन सुन के परेशान हुए होते हैं कि जिसने जमात से अपने आप को पीछे किया वो जहालत की मौत मरा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्लेज लेती हैं कोई रुकनियत का, कोई अपने कारकुन बनने का, और फिर वो कहते हैं कि अगर अब आपने हमें छोड़ा तो अब जहालत की मौत मरेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जो कहा जाता है कि एक जमात से जुड़ के रहना है, वो उम्मत मुस्लिमा की जमात है। इससे मुराद को हमारी जमात नहीं है जो हमने इस्लाम के नाम पे खड़ी कर ली, या मिसाल है कि अब आपको बुला रहे हैं कि जी क्लासेस हो रही हैं, आप यहाँ आए नूरुल कुरान में, अब ये एक इंस्टीट्यूट है ना, आप यहाँ फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जिसको पूरे कमिटमेंट से करना है वो अपना रिकॉर्ड देता है, हम उसका ट्रैक करते हैं, तो क्या ये कोई बैत है? ये बैत नहीं है। आपको हम अपना गुलाम नहीं बना रहे, या हम ये नहीं कह रहे कि चूंकि आपको हमने ये कह दिया तो करो। होता क्या कि पहले लोग इस किस्म के फॉर्म्स फिल कर चुके होते हैं, फिर वो घर में मर्दों को नाराज करें, बच्चों को रुलाएं, कुछ भी करें, वो उसको छोड़ नहीं सकते। खौफ ये होता है पीछे कि अब हमने अपनी बात करके तोड़ी है। अल्लाह के साथ कसम खाई भी क्या है कि बंदे ने कसम खाई मैं ये काम करूंगा, नहीं कर सका, या उससे कोई अच्छा काम दिखा, अल्लाह के नबी ने कहा बस उस कसम का कफारा दे दो, 10 मिसकीनों को खाना खिला दो, कपड़ा पहना दो, या 3 रोजे रखो, खत्म। तो अल्लाह के साथ की हुई कसम टूट सकती है, तो इंसानों के साथ की हुई भी टूट सकती है। तो बहरहाल ये है कि आज के दौर में मेरे इल्म के मुताबिक तो मुसलमानों में, खास तौर पे हमारे मुल्कों में, तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ जाके ये बैत की जाए। कमिटमेंट करनी है अल्लाह से कीजिए, कोई काम आप कर रहे हैं, आपने किसी को कहा कि हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे, करिए, शौक से करिए। अगर किसी लम्हे आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो वाज़े तौर पे बता दिया जाए। बस दफ़ा ये इंसानों की गुलामी तक आ जाती है चीज़, लोग अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना इंसानों से डरने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो बैत करते थे, इन्नमा युबायिउन अल्लाह, ये तो असल में अल्लाह से बैत कर रहे थे। अब देखिए यहाँ अल्लाह नहीं थे, नबी सल्लम से बैत थी, लेकिन वही बात जो आ गई कि मैं युति रसूल फ़कद अता, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, तो यहाँ जिसने रसूल से बैत की उसने अल्लाह से बैत की। यदुल्लाह ही फौक अईदी है, अल्लाह अकबर, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है, कितनी बड़ी बात है। आपको पता है कि जब बैत कोई रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हाथ के ऊपर हाथ रखते थे, और जब ये बैत हो रही थी तो आपने अपना एक हाथ नीचे रखा, और जब सारी बैत हो गई तो सबके ऊपर फिर अपना हाथ रखा, और आपने कहा कि ये उस्मान का हाथ है, कि अगर उस्मान होते भी आज इधर तो मुझे यकीन था कि वो ये बैत जरूर करते। ये एक एजाज उनको मिला है कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उनका कहा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ये जो दूसरा हाथ है ये रसूल का हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह के नायब का हाथ है, अल्लाह के रसूल का हाथ है। तो गोया कि अल्लाह के नबी ये जो बैत ले रहे थे तो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि ऐसे वक्त में जिन्होंने कर ली, उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई हम हर हाल में इस्लाम के साथ हैं। देखिए इस्लाम में बड़े मुश्किल हालात आते हैं, अच्छे दिन आते हैं ना तो सब साथ चलना चाहते हैं, मज़े से, खुशी से, वाह वाह भाग रहे हैं। ज़रा खुदा ना खासा कोई फितना आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई इल्ज़ाम लग जाए, कोई माली, कोई मुआशी, मुआशरती, अखलाकी परेशानी आए, उस वक्त लोग छटने लगते हैं। जो उस वक्त साथ देगा ना वो सच्चा है, सहाबा कराम ने ये साबित कर दिया। फिर इसी तरह एक और बैत अल्लाह के नबी के साथ लोगों ने की थी, बैत अकबा के नाम पर। मक्का में थे आप, और लेकिन मदीना से लोग आए, कहते थे हमारे पास आए, हमारे पास आए, इधर लोगों को ज़रूरत है, ये है वो है, तो आपने बैत ली थी कि अच्छा अगर मैं आपके पास मदीना आ जाता हूँ तो क्या आप फिर मेरे साथ चलेंगे दीन के काम में। तो इस तरह की बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी मिलती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली बात जो थी वो क्या है कि फमन नकस फइन नमयन कुसु अला नफसी, जो शख्स इस अहद को तोड़ दे तो इसके तोड़ने का वबाल इसी पर होगा। यानी जो इस अहद को करके तोड़ दे, यानी एक दफा बैत कर ली फिर ना निभा सके तो फिर उसके तोड़ने का गुना उसी को होगा। नकस कहते हैं अहद शिकनी को, मतलब यह है कि जो अहद किया था वो ना करना। बस हमको ये कहता है कि मैं लड़ाई में हिस्सा लूंगा, फिर नहीं लेता, तो इसका वबाल फिर उसी को पड़ेगा। वमन औफा बीमा आहद अलैहुल्लाह, और जो शख्स इस अहद को पूरा करे जो उसने अल्लाह से किया था तो अनकरीब अल्लाह उसको बड़ा अजर देंगे। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो कहते हैं वो निभाते भी हैं, जो कमिटमेंट अल्लाह के नाम पे करते हैं फिर उनको अपनी आखिरी जिंदगी तक निभाते रहते हैं, और अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में कर दे। अब आगे जो बात है ना वो बस समझ लें कि बहुत जानी पहचानी बात है। आयत पढ़ते हैं, सयकूलु लकल मुखल्लफून मिनल आराबी, अन करीब देहातियों में से वो लोग जो पीछे रह गए वो कहेंगे, यानी सयकूलु अन करीब कहेंगे, लका आपको नबी को कौन कहेंगे, अल मुखल्लफून मिनल आराबी, पीछे रहे हुए लोग अराबियों में से देहातियों में से क्या कहेंगे, शगलत नाम वाहलुना, हमें हमारे मालों ने मशगूल कर दिया था, और किसने, वाहलूना और हमारे घरों ने, लिहाजा फस्तगफिर लना, बस हमारे लिए बख्शिश तलब करें। यकूलू नबी अल सीनातिहिम, ये अपनी जुबानों से वो कहते हैं, मा लई सफी कुलूबिहिम, जो इनके दिलों में नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहें, कुल कह दीजिए, फमई यम लिकु लकुम मिन अल्लाही शैया, तुम्हारे हक में अल्लाह के सामने कोई इख्तियार रख सकता है, इन अराद बिकुम दर्रन औ अराद बिकुम नफा, अगर वो तुम्हारे साथ जरर का इरादा कर ले या नफे का इरादा कर ले, बल्कान अल्लाहु बिमा तामलून खबीरा, बल्कि अल्लाह ताला है साथ उसके जो तुम अमल करते हो खूब जानने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं देहातियों में से जो लोग पीछे रह गए किस चीज से, जंग में जाने से, जिहाद पे जाने से, वो अब आपसे कहेंगे कि हमें हमारे अम्वाल और घर वालों की फिक्र ने मशगूल कर रखा था, यानी इसलिए हम आपके साथ नहीं जाते, क्या करें, घर के काम ही बड़े हैं, मालों की जिम्मेदारी है, घरों की हैं, हम बस क्या करें, दिल तो बड़े ही चाहता है, बस ये घर नहीं जान छोड़ते हमारे, ये माल। और अम्वालू ना किन के हैं, मर्दों के, अमूमन मर्दों को अल्लाह के रास्ते से जो चीज़ रोकती है वो माल है, कमाना, घर बैठ जाएंगे तो कमाएंगे कैसे हैं। और अहलूना की फिक्र किनको होती है, अमूमन औरतों की, बच्चों की, बस हम तो मसरूफ थे, अब क्या करें, फस्तगफिर लना, अब दुआ भी आप ही कर दें हमारे लिए, हम गए नहीं, हमने गुनाह किया, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं, और अब दुआ भी आप ही कर दें, है ना इंसानों का रवैया। ये लगती है पुरानी बात 1400 साल, ये आज की बात है, ये हर दौर की बात है, किसी को किसी काम पे अल्लाह के बुला ले, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, दर्स के लिए, दावत के लिए, कोई और भी दीन का काम होगा, मैं ये नहीं कहती कि यही है, क्योंकि हम यही ज्यादा करते हैं तो मिसाल जो मुंह पे आती है, कोई भी बात कर देना पीछे बात आ जाती है, या घर वाले, और बहुत सारी तो अल्लाह माफ करे बहनें अपने शौहरों को आग में डाल के खुद बचना चाहती हैं, हर बात में उनका नाम ले देंगी, मियाँ नहीं जा, प्लगिंग मियाँ चाहते हैं जी प्लगिंग करो, इतने गौर से आपको वो देखते हैं, आप सोचिए जरा, यानी हर गुना का काम करने से पहले मियाँ का नाम, और कुछ नहीं तो ससुराल वालों का नाम, सास का मूड खराब हो जाता है अगर मैं जाऊं, वो फिर घर के काम, फिर मुझे उनकी तेवरियां देखनी पड़ती हैं, यानी हर जगह रहते खुद पीछे हैं और दूसरों का नाम लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर ताल्लुक जो अल्लाह से बिगड़ा हुआ है तो बख्शीश भी खुद नहीं मांगते कि शर्म आती है, और आज देखें ये रुझान है ना, खुद नहीं जाएंगे दीन पे, कोई काम नहीं करेंगे और दूसरों को देख के कहेंगे बहुत अच्छा काम करें, जरा हमें भी दुआ में याद रखिएगा, वो आप तो बड़े नेक लोग हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, आप तो बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह आपकी सुनेगा, यानी गोया के हम दुआ भी नहीं खुद करते। अब ऐसे लोगों का हाल क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी ये कोई बात नहीं है इसमें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला कहते हैं यकूलू नबी अल सीनातिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, अपनी जुबानों से ऐसी बातें कहते हैं जो दिलों में नहीं होती, बहाने हैं सिर्फ, जहाँ जाना होता है जाते हैं, दो दो घंटे ब्यूटी पार्लर्स में जाके मशीनों में बैठते हैं, उस वक्त घर भी कोई होता होगा कि नहीं होगा, बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे, दोस्तों ने के साथ मर्दों ने जाना है, वो आधी आधी रात तक बैठेंगे गप्पे हांकेंगे, जिसको जाना है ना माल की परवाह रहती है ना घर की, जहां अल्लाह के दीन की बात आती है तो वो बातें कहते हैं जो दिलों में नहीं होती। ऐसे लोगों को जवाब अल्लाह ने दिया क्या, कुल फमई यमलिकु लकुम मिन अल्लाह, कौन तुम पे इख्तियार रखता है अल्लाह के मुकाबले में, यानी अगर तुम्हारी इस बेएतनाई की वजह से अल्लाह तुम्हें पकड़ ले तो बताओ कोई बचाने वाला है? जिस जात के मुकाबले पे तुम दुनिया की चीजों को, घर और माल और औलाद को तुम बड़ा कहते हो, फिर बताओ क्या तुम्हें कोई इसके मामले में पकड़ सकता है? अगर अल्लाह पकड़े, इन अराद बिकुम दर्रन और अराद बिकुम नफा, अल्लाह तुम्हें पकड़ना चाहे, अल्लाह तुम्हें फायदा देना चाहे, है कोई तुम्हें रोकने वाला? माल आएंगे काम उस वक्त, औलाद, घर, खुदा ना खास्ता हम में से कोई हल्की सी अजाब कब्र की भिनक का शिकार हो जाए, उस वक्त सारे रिश्तेदारों को बुला लें, कोई आएगा मदद के लिए? घर, माल, औलाद, बच्चे तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह बच्चे देता है, उसी अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अच्छे भले हम दीन पे आ रहे होते हैं, अल्लाह उम्मीद दिला देता है ना, अभी सिर्फ उम्मीद होती है, तो हम सबसे पहले अल्लाह का काम छोड़ते हैं। नहीं, अब तो जी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी है? लोग क्यों सोच लेते हैं बीमार हो गए? फिर बच्चा हो गया, अल्लाह की रहमत है, मासूम बच्चा तो कुछ कहता भी नहीं, ये तो माँ का दिल नहीं उसके बगैर लगता, बच्चा तो बड़ा खुश होकर सोता है। सोते बच्चे को उठा के जब माँ दूध पिलाएगी, वो तो शुक्र करेगा, उसको तो हर आप घंटा कहते हैं, वो तो आधे घंटे बाद मांगेगा। आप सोचें जरा, आपको आपकी माँ ने अपने गोद में लिया हो तो आप निकलेंगे माँ की गोद से? मैं कहती हूँ वो मूसा की माँ थी कि जिसने अल्लाह के हुक्म पे दरिया में डाल दिया बच्चा। आज आप माँ को कहते हैं कि बेबी सिटर को दे दें, कहती नहीं बच्चा नहीं छोड़ना, ऐसे ही पढ़ेंगे। यानी साथ वाले कमरे में बेबी सिटर है, खुदा के लिए वहां कोई ऐसा मसला नहीं, वहां कोई जुल्म नहीं होगा, प्यार से वो रखेगी। नहीं, हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते, हमने कहाँ जिहाद में भेजने और हमने कहाँ अल्लाह के रास्ते में निकलना है? हम इनको जैसा पालेंगे ना, ये वैसे ही पालेंगे इनको। पहले दौर में आप देखिए, 10-10 बच्चे थे लोगों के, माएं घरों का काम करती, चक्की में आटा पीसती, वजह क्या, बच्चे को सुबह नहलाया धुलाया, सो जाते थे। अब वो 70 किस्म की मशीनें हैं, बच्चे को आप इतना जो लाड देंगे, नतीजा क्या होगा? वो बच्चे आपके सर पे चढ़ेंगे। तकाबुल की बात नहीं, सिर्फ ये बात है कि जिस चीज को आप अपने दिल के अंदर जगह दे लेंगे ना, वही आपका रोग बन जाएगा, वही माबूद बन जाता है। जितनी हम अपने बच्चों को ज्यादा तवज्जो देते हैं ना, फिर वो कल उतना ही हमारे सर पे चढ़ते हैं। आप किसी को इग्नोर करें, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, और जिनको आप बच्चे की तरह फीड करते हैं ना, उंगली पकड़ पकड़ के हाथ से खिला रहे हैं, 6-6 साल के भी बच्चे हो जाते हैं, माँ के बगैर नहीं खाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछो कौन काम आएगा, बल कान अल्लाहु बिमा तअमलूना खबीरा, अल्लाह को पता है ये क्या करते हैं। खास तौर पे उस दौर में चंद कबीले थे जिनके नाम इनायतों के साथ आते हैं। कबीला गफ्फार था, मुजैना, जोहैना, कबीला असलम, अशजो और दील। ये कहते हैं कि मदीना के इतराफ में रहते थे, और जब इनको पता भी चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लम ने ख्वाब देखा और आपके साथ लोग जिहाद पे जा रहे हैं, तो इन्होंने उस वक़्त भी बहाने कर दिए कि नहीं, अब कैसे जाएंगे और मुश्किल होगा। लेकिन जब मुसलमान वापस आए तो फिर आपसे आके बहाने करने लगे। ये बिल्कुल वही अंदाज़ है जो गज़वाए तबूक के मौके पर हुआ था, और वापस आते ही बहानेबाजियाँ करने लगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं बल ज़नन तुम, असल अब बोल क्या है? पहले तो कहा वो कह रहे हैं जो दिलों में नहीं, अब इनकी असल कहानी खुलती है। बल जनन तुम, बल्कि तुमने गुमान किया। किसने गुमान किया? इन मुनाफिकों ने। अल्लयन कलीबर रसूल वल मोमिनून इला अहलीहिम अबदा, कि नहीं वापस आएंगे रसूल और ईमान वाले अपने घर वालों की तरफ कभी भी। ये खौफ था जो तुम नहीं आते थे, कि देखना इन्होंने वापस नहीं आना। आज भी ये कहते हैं दीन में आ जाएंगे तो फिर घर वालों के तुम रहेंगे नहीं, फिर हमारे घर खराब हो जाएंगे, फिर जो दीन पे चले जाते हैं वो तो बस दुनिया के रहते ही नहीं, फिर इतनी पाबंदियां लग जाती हैं, और फिर वो है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी असल ये थी कि तुम दिल से ये सोचे हुए थे कि इन्होंने वापस ही नहीं आना, तो हम अपनी जान क्यों जाया करें। वज़ुज्जिना ज़ालिका फ़ी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को ये ख्याल बड़ा अच्छा लगा, दीन के काम से, नेकी के मौके से रुकना तुम्हें बड़ा खूबसूरत लगा, तुम अपने आप को होशियार समझते थे। देखो मैं कितनी समझदार हूँ, ऐसी बातों में नहीं आती, ये लोग जज्बाती हैं, फटाफट बातों में आ जाते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। और आज देखें जो कुरान की क्लास में आके बैठा हुआ शख्स खुशी महसूस कर रहा होता है ना, लेकिन जो रुका होता है वो घर में एक और ही सबसे खुश हो रहा होता है, लेकिन उससे कोई पूछे कि वहां जाके जो खुशी मिली वो कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला कहते हैं वज़नन तुम ज़न्नस सौ, और तुम्हें बहुत बुरे गुमान आए, तो नहीं तुमने बड़ा बुरा गुमान सोच लिया था। वकुन तुम कौमम बूरा, तुम हो ही हलाक होने वाली कौम। देखिए सिर्फ अरबी के लफ्जों को देखें तो बात समझ आ रही है ना, जिनको अल्लाह कह दे हलाकत है, क्यों? अल्लाह के दीन से रुकना हलाकत ही तो है, इसके नतीजे में खैर तो कभी नहीं मिलती। वमल्लम यूमिन बिल्लाही व रसूलिही, اور جو نہیں مان لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے بدظنی رکھے یا مسلمان ہونے کے باوجود اس کی ہمدردیاں اسلام دشمن گروہوں کے ساتھ ہوں تو اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر ایمان رہا ہی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ کی بات آ رہی ہے نا، اس کے اندر ایمان تو رہا ہی نہیں ہے، اور ایسے شخص کو آخرت میں کافروں جیسا عذاب ہوگا، چاہے دنیا میں وہ ایمان والوں میں ہی تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج تو ہمیں نہیں پتا نا کہ ہمارا وہاں کیا مقام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص جب فوت ہوتا تھا نا تو قدرتی طور پہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کفل کا، جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اور بدمعاش ٹائپ شخص تھا، برائی کرتا تھا، لیکن ایک موقع پہ ایک عورت کو جب اس نے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہا، پھر اس نے تھوڑی ہیزیٹیشن کی تو اس نے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد رویا، صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ اس خیال سے دیکھنے آئے کہ آؤ دیکھیں کہ کفل کے گھر کے باہر کیا لکھا ہوا ہے، کہاں گیا ہے۔ ان کا تو خیال تھا پتہ نہیں بیچارہ کہاں گیا ہوگا، لیکن اللہ نے لکھوا دیا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ کفر، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو تو اللہ نے پہلے دنیا میں بتایا، پھر دوسری بات ہے کہ ان سب کے قصے آج قرآن میں کھلے ہوئے، یہود کے، بنی اسرائیل کے، حابیل کے، قابیل کے۔ ہمارے لیے پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے حالات چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی اگلی کتاب بھی نہیں۔ بالفرض آپ سوچیں اگر اس کے بعد ایک اور کتاب ہوتی، تو جیسے بنی اسرائیل کے قصے اور آج مکہ کے اور مدینہ کے اور ان یہود کے ہم پڑھیں، آج ہمارے قصے بھی تو اس کتاب میں لکھے ہوتے۔ سوچنے کی بات ہے نا، جن قوموں کی کہانیاں ہوتی ہیں کوئی خراب لوگ نہیں ہوتے، وہ اپنے دور کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے حالوں پہ رحم کیا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو لفظ بورا ہے، یہ باہر کی جمع ہے، ہلاک ہونے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو وہاں یہ نہیں بچ سکیں گے۔ تیسری دفعہ آ رہا ہے پھر اس صورت میں وللہ ملک السماوات والارض، پہلے کیا آیا وللہ جنود السماوات۔ آپ کو غلبہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی میری ضرورت نہیں ہو، کوئی میری مجبوری نہیں ہے کہ تم میرے کام نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے لوگ، اللہ کی تو بادشاہی آسمانوں اور زمین پہ، ساری کائنات اس کی سنتی ہے، اتنا بڑا سورج اس کی سنتا ہے، اتنا بڑا چاند اس کی سنتا ہے، تم نہ سنو، تمہاری مرضی۔ ہاں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اب اس پہ پھر لوگ کہیں گے دیکھا جسے اللہ چاہے گا وہی ہوگا، تو اس پہ ہم بھی سیوں بار بات کر چکے کہ جو خود چاہے گا اللہ اسی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ ملتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، لہٰذا جیسے لوگ کام کریں گے ویسا ہی ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا۔ پھر پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اللہ بندے کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی، ورنہ تو نہ جانے اس کے بعد اور کیا ہو جاتا۔